नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या, नैव तस्य कृतेनार्थ है, प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक वह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है तब तक उसका अपने लिए करना शेष ही रहता है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए माने व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हुए हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं है। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है। इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति की प्राप्ति हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन भी नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे आदर्श कर्म नहीं होते, ये सिद्धांत है। नाकृते ने कश्चन, जो मनुष्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य प्रमाद आदि में रुचि रखता है वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद आलस्य आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है, 18 का 39। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है? क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मार्मिक बात, प्रायः साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति श्रेष्ठ है, तथापि वह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति माने करना और निवृत्ति माने न करना दोनों ही प्रकृति के राज्य में हैं। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही, और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं। इसलिए चलने बोलने देखने सुनने आदि की तरह सोना बैठना खड़ा होना मौन होना मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक समाधि भी कर्म ही है। जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं, परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर अब ये दो अवस्थाएं किसमें होंगी, कैसे होंगी? अब वहां तो सहज समाधि अथवा सहज अवस्था होती है। इस सहज अवस्था से कभी व्युत्थान नहीं होता, कारण कि सहजावस्था स्वरूप की है और समाधि और व्युत्थान ये प्रकृति की है। अवस्था का भेद प्रकृति में होता है, स्वरूप में नहीं। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। वास्तविक तत्व चेतन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों नहीं है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर ही करना और न करना ये दो विभाग होते हैं। वास्तव में करना और न करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति क्रिया है, ऐसे तिष्ठति भी क्रिया ही है। गच्छति का अर्थ जाना और तिष्ठति का अर्थ खड़ा रहना। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया दिखती है, किंतु तिष्ठति में क्रिया दिखती नहीं है। तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी, अब उसी शरीर में खड़े होने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और न करना, इन दोनों में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना माने प्रकृति में ही है, ये प्रवृत्ति प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति में ही है। जिसका प्रकृति और उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता माने शरीर में अहंता और ममता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है ही। नचास्य सर्व भूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः है। शरीर तथा संसार से किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती है। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर स्वतः ही संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथ से ही अपना मुख धोने पर अपने में स्वार्थ प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं होता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष के किंचन मात्र भी स्वार्थ प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध पुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए तीन बातें कही है। पहला, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। दूसरा, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और तीसरा, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उसके मन में किसी से कुछ भी पाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है। कारण के शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती नहीं है। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा और जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, उसे स्वतः ही कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहां अकर्तव्य होने की संभावना हो वही कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष बात, गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहां 17वें-18वें श्लोकों में भी उसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहां से आरंभ होता है अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से आरंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहली बात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। मा कर्म फले हेतुर्भु, तो कर्म फल का हेतु मत बन। चौथा, माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। प्रस्तुत इस 18वें श्लोक में ठीक उपर्युक्त साधना की सिद्धि की बात है। वहां दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही, माने मा फलेषु कदाचन और मा कर्म फल हेतुर्भूः, वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए की गई है कि उसका किसी प्राणी के साथ और पदार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय है। वहां पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही, मानो कर्मण्येवाधिकारस्ते और माते संगोस्त्व कर्मणि, वह इस श्लोक में पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, उसका कर्म करने अथवा न करने दोनों से कोई प्रयोजन नहीं होता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध वे महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए। कारण कि जब कर्मयोग से सिद्ध वे महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ से जीवति पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बताया था, अतः 17वें श्लोक में यस्तु पद के द्वारा यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं प्रत्युत महान सार्थक है। कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है, अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, परंतु परम शांति सबको समान रूप से मिल सकती है। परिशिष्ट भाव, संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है। परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण की चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। यो वतिष्ठति नेंगति, उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवा कुछ नहीं रहता है।